ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए FSSAI की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पूर्व सदस्य बेजोन कुमार मिश्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं की जागरूकता के विषय पर, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पूर्व सदस्य बिजोन मिश्रा जी। मिश्रा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
तो मिश्रा जी, जैसे आप स्वयं ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सदस्य रहे हैं, जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी, और खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये जो आपकी संस्था है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और आज के समय में खाद्य सुरक्षा की जो चुनौती है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन आपके प्राधिकरण ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी इस विषय पर बहुत ही सजग हैं, और कल जैसे उन्होंने प्राधिकरण का दौरा भी किया था और उन्होंने ये माना कि प्राधिकरण बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो आप हमारे श्रोताओं को मिश्रा जी ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि ये प्राधिकरण का मुख्य जो इसकी गतिविधियां है वो क्या है और ये किस तरह से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
ये एक्चुअली हम लोग फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो पहले था ब्रिटिश जमाना की जो कानून था उसको हम लोग 2006 में लाए एक नया कानून के रूप से, जिसको हम लोग कहे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। और इसका जो मेन पर्पस था कि हम लोग मानक बनाए खाद्य पदार्थ के जो मार्केट में बिकता है, केवल फूड नहीं बेवरेज भी, मतलब कोई भी बेवरेज जो मार्केट में बिकता है बंद बॉटल्स में या पैकेज्ड कमोडिटीज जो बिक रहा है, बिकॉज ये जो कानून है ये लूज कमोडिटीज के लिए नहीं है, ये मोस्टली पैकेज कमोडिटीज के लिए है और प्रोसेस्ड फूड के लिए है, जो लोग रेस्टोरेंट्स में उपलब्ध करते हैं या जो भी खाना जो बनकर हम लोगों को सर्व किया जाता है वो सारे इस कानून के तहत आता है। और इसके लिए स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ कैसे हम लोग हार्मोनाइज करें अपने को, कैसे हम लोग वर्ल्ड बेस्ट स्टैंडर्ड को अपनाएं हमारे देश में भी, उसको लेकर आगे बढ़ने का काम इस अथॉरिटी को दिया गया था। और होलसम फूड जो स्वास्थ्य के लिए सही हो, जो सेफ हो, जिनका गुणवत्ता सही हो, जिनका न्यूट्रिशन सही है, जिसमें जो भी चीज आप मिला रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, जैसे कोई भी एडिटिव आप मिला रहे हो, कोई भी कलर आप यूज कर रहे हो, वो सब एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, जिसके चलते लोगों को महसूस हो कि हमारे फूड चेन में जो खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है वो हमारे लिए सेफ है, हम विदाउट एनी हेजिटेशन उसको हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जब से हम लोग शुरू किए 2008 में गठन जब हुआ, पहले तो इंस्टीट्यूशन कैसे बनेगा, कितने साइंटिस्ट को नियुक्त करेंगे, कितने लोग वहां काम करेंगे, किस ढंग के काम होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वो सब में हम लोग मतलब पहला एक साल में एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लेकर मैक्सिमम काम करना शुरू किए। उसके बाद धीमे धीमे स्टेट्स गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट का भूमिका बहुत अहम होता है इसमें, और स्टेट रेगुलेटर्स जो हैं उनको कैसे हम लोग एकत्रित करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म में ला सके, उसका हम लोग प्रयास करना शुरू किए ताकि एक नेटवर्क बने हमारे देश में। और ऑफकोर्स जैसे हम कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां बैठे थे उस अथॉरिटी में एज अ नॉमिनेटेड मेंबर, हमारा काम ऑलवेज ये होता था कि लोगों में जागरूकता कैसे लाएं, कैसे हम लोगों को अवगत कराएं कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किससे बचना चाहिए, किस ढंग का खाद्य पदार्थ को खरीदना चाहिए, जब शिकायत हो तो कहाँ करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, ये सारे प्रक्रिया जो है वो बनाने का कोशिश हम लोग शुरुआत में किए। जो आज आप देख रहे हो अथॉरिटी जिस जगह पे है वहां पे कई लोग काम कर रहे हैं उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूकता के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए, और कितने साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं बैक एंड में हम लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए। और वर्ल्ड का बेस्ट स्टैंडर्ड्स, हम ये गौरव के साथ ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट स्टैंडर्ड्स इंडिया में भी अब उपलब्ध हो रही है और हम लोग बेटर भी कर रहे हैं, कई कंट्रीज से हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप यदि तुलना करें तो हम लोग का जो अचीवमेंट हुआ है अब तक 2024
जी। मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड है, विश्व के जो मानक हैं, तो वो विश्व के मानक कौन से हैं और कौन सी संस्थाएं उनको तय करती है?
एक संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बना था WHO और FAO को लेकर। ये दोनों संस्था एक साथ एकत्रित होकर हार्मोनाइज किया वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स को, और उस हार्मोनाइजेशन प्रोसेस को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के रूप से नाम दिया गया, जो वर्ल्ड में अब सारे कंट्रीज मिलते हैं। कई कमिटीज हैं उसमें जो हर साल मिलता है। जैसे हमको याद है, हम करीब करीब 6-7 साल तक लगातार कनाडा गए, हमारे कंट्री डेलीगेशन में जो कोडेक्स कमिटी ऑन फूड लेबलिंग, और वहां बहस हो रहा था जेनेटिक मॉडिफाइड फूड को लेकर, और इंडिया बहुत ही लीडिंग रोल ले रहे थे उस समय कि हमारे देश में कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फूड में ना हो, और उसके लिए क्या स्टैंडर्ड बनना चाहिए, और हम लोग किस ढंग से उस स्टैंडर्ड को लेकर वर्ल्ड भर में एडवोकेसी किए ताकि एक स्टैंडर्ड ऐसा बने कि ऑल कंट्रीज जो UN के मेंबर्स हैं, जो WHO के मेंबर्स हैं, FAO के मेंबर्स हैं कंट्रीज, वो सारे एक ही मानक से बन जाए, और इंडिया भी उस ढंग से अपना स्टैंडर्ड, देश के जो कानून है उसको उस ढंग से लाएं, तो हमारे फूड सेफ्टी अथॉरिटी में उस ढंग के रूल्स बने इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेकर, जहां एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हुए और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हुए, और हम लोग सब लोग लेकर उस ढंग का मानक लाए कि वर्ल्ड का आज बेस्ट स्टैंडर्ड हमारे देश में है, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी इस कानून को उल्लंघन करके कोई भी जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे हम आपको कह रहे हैं, हमारे देश के अंदर इम्पोर्ट ना हो सके, उसका प्रयास हो रहा है, उसका सर्विलेंस चल रहा है, उसपे स्टेट्स बहुत सतर्क रहते हैं, अलर्ट रह रहे हैं कि उस ढंग का प्रोडक्ट्स हमारे देश में गैर कानूनी रूप से इम्पोर्ट ना हो।
तो मिश्रा जी, जैसे आप लोग प्राधिकरण की तरफ से जो मानक बनाए जाते हैं, विश्व के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका ध्यान रख के, या दुनिया के और देशों में जिस तरह के मानक हैं, तो इस प्रक्रिया में जब आप मानक निर्धारित करते हैं तो क्या लगातार उनकी समीक्षा होती है, उनमें बदलाव होता है, किस तरह से आप इस पूरे प्रक्रिया को करते हैं?
देखिए, कानूनी रूप से हर एक स्टेट गवर्नमेंट को फूड प्रोडक्ट्स और बेवरेजेस का सैंपल्स मार्केट से, सप्लाई चेन से पिक करना चाहिए रेगुलर मैनर से, और निर्धारित लेबोरेटरी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लेबोरेटरीज है वहां पर उसका जांच होने के लिए भेजना अनिवार्य है, और उस ढंग से भेजना अनिवार्य है कि जहां टेस्टिंग हो रही है उनको पता नहीं लगे कि कहां से आ रहा है, किसका प्रोडक्ट है, किस कंपनी का है, उसको मास्किंग करके उसका सही ढंग से जो टेस्ट प्रोसीजर्स है उस प्रोसीजर्स को अपना के टेस्टिंग किया जाता है, और यदि कोई भी गलत पाया जाता है तब सारे बैच के अलर्ट हो जाता है कि ये सारे बैच को रिकॉल करना चाहिए मार्केट से। आपको मालूम है बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था हमारे देश में, और उसको लेकर कैसे रिकॉल हुआ, कंपनी ने सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट से उठाकर फिर उसको डिस्ट्रॉय किए, और ये जो प्रक्रिया हुआ उससे हम लोगों का कितना भरोसा बढ़ गया कि जो तंत्र है यूपी गवर्नमेंट जिसने इसको करवाया था उन लोग कितने सतर्क थे, और इमीडिएटली जब उन लोग पाए कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेट है, जो एज पर मानक नहीं है, तो उन लोग ने कार्यवाही शुरू करके उस सारे सैंपल्स को लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, उनको सुरक्षित महसूस करवाने के लिए मार्केट से पिक करके उसको डिस्ट्रॉय करवाया। तो इस ढंग का कई प्रक्रिया चलते रहता है। हर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने जो रिपोर्ट्स होते हैं वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी को रेगुलरली वो लोग रिपोर्ट भेजते हैं कि कितने सैंपल्स उठाए, कहाँ कहाँ टेस्ट हुआ, उसका रिपोर्ट का क्या निकला निष्कर्ष, और उन लोग ने क्या एक्शन लिया जहां पर एक्शन लेने अनिवार्य है। तो इस ढंग से कानूनी रूप से ये प्रक्रिया चल रहा है।
मिश्रा जी, आपके जो प्राधिकरण है, मानक प्राधिकरण है, इसके पास क्या कुछ कानूनी अधिकार भी हैं? नहीं तो आपके लिए ये कैसे संभव है कि अगर कुछ गड़बड़ी, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि कहीं कुछ गड़बड़ी मिलती है या सैंपल्स में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो खाने योग्य नहीं है, तो आप एक्शन कैसे लेते हैं, कानूनी रूप से क्या अधिकार आपके पास है?
देखिए, कानूनी अधिकार हर एक स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है कि वो सैंपल पिक करें, उसको जांच करवाएं रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज में, उनके रिपोर्ट में यदि कोई भी खोट उन लोग पाए कि इट इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड और एज पर लॉ, तो उन लोग इमीडिएटली उसमें सील कर सकते हैं फैक्ट्री को और रिकॉल कर सकते हैं जहां भी इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट से वो रिकॉल कर सकते हैं। ये कानूनी उनके पास अधिकार है, और यदि कोई भी कंपनी उनका सुनवाई नहीं करते हैं और वो लोग यदि चले जाते हैं जुडिशियरी के सामने कोर्ट के पास और स्टे ऑर्डर लाते हैं, तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि उस स्टे को उन लोग हटाए और इस ढंग का प्रोडक्ट मार्केट में न आए, इसके लिए उन लोग कार्रवाई करें और इस ढंग से कार्रवाई करें कि दोबारा कोई इस ढंग का गलती ना करें, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और तो सारा कानूनी प्रावधान है आज के दिन में, और स्टेट गवर्नमेंट ले सकते हैं उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उनका स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फूड सेफ्टी इज पैरामाउंट। हम तो ऑलवेज बोलते हैं कि फूड सेफ्टी में कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये तो सरकार का काम है ये काम करने का। कितने लोग नियुक्त हुए हैं, कितने फूड इंस्पेक्टर्स हैं, अभी भी हर स्टेट में कई वैकेंसीज भी हैं फूड इंस्पेक्टर्स का, वो भी होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि मैक्सिमम सैंपल्स मार्केट से उठ सके रेगुलरली और टेस्टिंग भी हो सके इन ए रेगुलर मैनर।
जी मिश्रा जी, एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल हम सभी के मन में आता है कि जहां पर जैसे आपने कहा कि जो पैकेज फूड है उस पर आप नियंत्रण रखते हैं और मानकों को लागू करते हैं, और जो भी मान लीजिए बड़े रेस्टोरेंट हैं या ऐसी बड़ी स्टोर्स है तो वहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन सड़क पे जिस तरह के खाने का सामान बिकता है और वहां अगर मानकों से समझौता होता है और मानकों के अनुरूप खाने का सामान नहीं होता है तो उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है?
हमने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को करीब 15 साल पहले ये कहे थे उनको कि उनको ध्यान देना चाहिए स्ट्रीट फूड, बट हमारे देश में कभी कभी कानून इतना कंबरसम है, इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बात की है, स्टेट गवर्नमेंट्स कहने लगे ये म्युनिसिपैलिटी का जिम्मेदारी है, म्युनिसिपैलिटी कहने लगे कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है, हम इसको सही ढंग से मानक नहीं दे पा रहे हैं, सही ढंग से उनको दिशा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कई कारण हैं जिसके चलते स्ट्रीट फूड हमारे देश में एक्चुअली, आप यदि दूसरे नेबरिंग स्टेट्स के साथ कंपेयर करें, जैसे थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ, वहां यदि आप जाएं और देखें स्ट्रीट फूड का कितने हाइजीनिक रूप से वो लोग करते हैं, यहाँ इंडिया में भी, जिसके चलते हम लोग ऑलवेज उस जगह पे जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हर व्यक्ति चाहता है कि हमको कम से कम पैसे में अच्छा टेस्टी फूड मिले, और कभी कभी लोग ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दिए, आप यदि आम तौर से कंपेयर करेंगे दूसरे चाट वाले का प्राइस से और किंग ऑफ चाट्स ऑफ लखनऊ, आप कई साल पहले, अभी नहीं, अभी तो उनको दिखता ही नहीं है, वो है ही नहीं बिजनेस में लगता। तो मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। स्ट्रीट फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीका है लोगों तक अच्छा खाना पहुंचाने का, प्रोसेस्ड एंड कुक्ड फूड पहुंचाने के लिए। हम लोग रेस्टोरेंट्स को भी स्टार कैटेगरी में देना चाहते हैं, जैसे होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट अच्छा हाइजीनिक है, और आप जानते हैं आजकल कितने पॉपुलर हो गया है ओपन किचन। आप कहीं भी कोई भी रेस्टोरेंट में जब जाते हो जहां पर ओपन कुकिंग हो रहा है, वहां आप प्रेफर करते हो जाने के लिए कि उसका डिश कैसे वॉश कर रहा है, पानी कहां से ला रहे हैं, किस ढंग का पेयजल दे रहा है पीने के लिए, किस ढंग का जल से वो लोग कुक कर रहे हैं, क्योंकि जल एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है फूड प्रोसेसिंग में। और हम लोग ऑलवेज ये कोशिश करते हैं कि कैसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सही ढंग से पेयजल मिले।
जी मिश्रा जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि जो उपभोक्ताओं को जागरूक करने की बात है, इस विषय पे किस तरह के कैंपेन, किस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, और कैसे उपभोक्ताओं को इस पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाता है?
हम ऑलवेज अथॉरिटी FSSAI को ये चीज 2008 से लेकर अभी तक हम रेगुलरली बोले जा रहे हैं कि आप जागरूकता के लिए कैंपेन शुरू कीजिए। जैसे हम लोग जागरूक ग्राहक जागो शुरू किए 2005 में, करोड़ों में वो फंड है जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड, और हम ऑलवेज सरकार को ये बराबर उनका ध्यान आकर्षित करवाते हैं कि ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड केवल रखने के लिए नहीं है, उसको यूज करने के लिए है। प्लानिंग कमीशन ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो आप नीति आयोग को देखना चाहिए गौर से, कि उस फंड को सारे मिनिस्ट्री जिसको भी कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए पैसे चाहिए, साधन चाहिए, उनको उस फंड से लेना चाहिए।
जी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी, इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।
अभी आप सुन रहे थे खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए FSSAI की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पूर्व सदस्य बेजोन कुमार मिश्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।